कहना कि दो तीन दिन से बड़ी गर्मी थी सख्त है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि हवा चली और हल्की फुल्की बारिश हो गई
अल्हम्दुलिल्लाह। हवा चली मगर हवा में
शुक्र अदा कर,
हवा चली मगर हवा में मिट्टी कितनी थी,
वो बारिश हो गई ना फौरी तौर पे अल्लाह पाक ने कर दी तो वो मिट्टी कम थी शुरू में थी वो लेकिन जब साथ बारिश शुरू हो गई तो दोबारा तो मिट्टी कम हो गई।
बहुत शुक्रिया।
और फिर अब बड़ी ठंडी
ठंडी हवाएं
लेकिन रात है। हाँ मेरा एरिया रहाइश जो है समनाबाद लाहौर के इलाके में और यहाँ पे ग्रीन एरिया बड़ा खूबसूरत
सही
बहुत ज्यादा चाय
बनाकर पी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में बंदे बंदे के पास टेलीफोन है, हमारी इंटरनेशनल कंपनियों ने इतना इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया है कि जो देखना देखी जाओ, पढ़ो ना जिन्ना खेडना खेडो, पर जिथे काम की गल करी थी उथे इंटरनेट ही नहीं काम कर रहा। अच्छा मियां साहब, हम बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे एंड मेरा आपसे रिजर्वेशन थी उसके बारे में कि एफआईए के पास सबूत थे जिसकी बिना पर इस शख्स को अरेस्ट किया गया, फिर इसका रिमांड होता है। क्या वजह थी कि मजिस्ट्रेट जो है आउट ऑफ द ब्लू इसको फारिग कर देता है? वॉज देयर एनी पोलिटिकल प्रेशर, वॉज देयर एनी ब्राइब और वॉट इट वॉज?
करने लगा था कि अभी इब्तदाई सतह के ऊपर ना, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में जेर समात है तो इस एक्ट के ऊपर तबसरा करना मुनासिब नहीं होता। एक बात जो बहुत ज्यादा तवज्जो
है, आवाज फिर
छुट्टी होती,
आपकी आवाज क्यों कटती है दाऊद साहब? आपकी आवाज कटती है बीच बीच में, आपकी आवाज कटती है।
इशू हो सकता है मेरे पास तो पीटीसीएल का जो 8 MB वाला क्या उसे कहते हैं इंटरनेट है वो लगा हुआ है, आवाज कटनी तो नहीं चाहिए।
अल्लाह की कसम कट रही है, मैं गलत नहीं कहती। एनीवेज अच्छा, तो अब आपने कहा कि अभी इसको डिस्कस भी नहीं किया जा सकता, बट देर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड, सो व्हाट इज दी आपकी तवक्को में क्या रीजन हो सकता है?
जी मैं बताने लगा कि ईद वाले दिन ना छुट्टी होती है तो अदालतों का प्रोसीजर ये होता है कि उस दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट काम करते होते हैं, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी वकालती जिंदगी में ईद वाले दिन छुट्टी वाले दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फर्ज करें अगर उसके पास 100 मुलजम पेश हुए हैं रिमांड के लिए तो उसमें से किसी एक मुलजम को डिस्चार्ज कर दिया गया हो और 99 को या तो रिमांड दे दिया गया हो या जुडिशियल रिमांड पर अदालती तहवील में भेज दिया गया हो। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ है कि काबिल एहतराम जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो थे उन्होंने सिर्फ इस मुलजम को डिस्चार्ज किया, बाकी सबको जो है वो किसी का रिमांड दे दिया, किसी को जुडिशियल जो है वो भेज दिया। लेकिन अब आगे चल के इंशाल्लाह ताला इस चीज को।
मियां साहब आपकी पढ़ाई हुई बातें, आपकी पढ़ाई हुई बातें मुझे बड़ी याद रहती हैं। आपने कहा था कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक शक 26 है जिसमें इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ जस्टिस के वो मजिस्ट्रेट जज जिसको लगाए, इट कैन बी भंगी, इट कैन बी हिज ड्राइवर, इट कैन बी हिज, तो ये जो मजिस्ट्रेट साहब है इनकी तालीमी काबिलियत क्या थी?
ये वो जो मैंने गुजारिश की थी वो एक अलग था, लेकिन ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये अब जो आईन में जब अदलिया को और इंतजामिया को अलग कर दिया गया तो ये मजिस्ट्रेट जो है वो बाकायदा इम्तिहानी प्रोसेस देने के बाद वकील होते हैं, वकील होने के बाद सिविल जज का इम्तिहान पास कर देते हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करते हैं और उसके बाद फिर ये एज जज जो है वो फंक्शन और ड्यूटीज जो है वो अपनी परफॉर्म करते हैं और ये जुडिशियल ऑफिसर्स इनको कहा जाता है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में इनको मजिस्ट्रेट जो है वो बोला जाता है। तो ये मैंने इनकी शोहरत बहुत अच्छी सुनी है और ये बड़े काबिल, इनकी काबिलियत की भी बड़ी बातें सुनी है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एक इस मुल्जम को डिस्चार्ज कर दिया, बाकी सबको जो है वो रिमांड दे दिए, जुडिशियल भेज दिया या उनको जमानत दे दी, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है।
बहुत शुक्रिया। और इस पे पिटीशन दायर की है जनाब, मियां दाऊद साहब ने पिटीशन दायर की। एक और चीज मियां साहब जो है कि निगेबान रमजान पैकेज के बारे में आज बड़ी खबर गर्म है। निगेबान रमजान पैकेज ये तकरीबन 150 मिलियन रुपए की ادائیگی تھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی اس کی تشہیر کی گئی تھی، مگر اس کے بعد جو ہمارا ادارہ ہے انہوں نے جب ان کو پیمنٹ کرنے، حکومتی ادارے نے جب اس کو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب کو یہ بل پیش کیا گیا تو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن پنجاب نے کہا کہ ہم نے تو ایسی کوئی اسکیم کو ہی الاؤ نہیں کیا۔ الٹیمیٹلی میک لانگ اسٹوری شارٹ، سنا ہے کہ جنہوں نے پیسے نہ دینے کا کہا تھا ان کو فارغ کر کے نئے لوگوں کو لے آئے ہیں۔ کچھ فرمانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ یقیناً آپ کے نوٹس میں ہوگا۔
اور پاپا میں نے بس ٹی وی کے اوپر سستری سی ہی یہ خبر سنی ہے، اس طرح کی کوئی بات تشہیر وغیرہ کرنی میں
آپ کے نوٹس میں نہیں،
کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک،
میرے نوٹس میں نہیں ہے، میں مصروفیت کافی زیادہ رہی اور یہ ہے میرے خیال دو تین دن پرانی جو ہے وہ خبر ہے۔ سٹی 42 کے اوپر بہت زیادہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا تھا، میں اس وقت اپنا کیس تیار کر رہا تھا، لیکن میں ایک دوسری سائڈ کے اوپر ہمیشہ سے، چاہے جس بھی جماعت کی حکومت ہو، میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اس طرح کی تشہیر بازی کرنے سے، اخبارات میں اشتہارات دینے سے، ٹی وی چینلز پر اشتہارات دینے سے سیاسی جماعتوں کی یا حکومتوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی۔ حکومتیں عملی طور کے اوپر پرفارم کریں، وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا اشتہار ہوتا ہے، وہ منصوبہ، وہ کام، وہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک نام ہوتا ہے اور وہ خود بخود چلتا رہتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، چودھری پرویز لائی صاحب نے پنجاب میں ریسکیو 1122 شروع کی تھی۔ اب آپ جتنے بھی پرویز لائی کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے سمیت ہم اس بات کے دائی ہیں کہ ریسکیو 1122 جیسی نعمت جو ہے اس کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں چودھری پرویز لائی کا، وہ کم ہے۔ اور اس لیے جب اس طرح کے آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی خود بخود تشہیر ہوتی ہیں۔ اس لیے سرکاری خزانے کو، کسی حکومت کو چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا، اخبارات، اشتہار، ان کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، یہ غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ اپنی تشہیر کی، اپنی سیاسی جماعتوں کی تشہیر پر خرچ نہیں ہونا چاہیے۔
ابھی جب آپ نے بات کی اور اس ریسکیو سروس کے بارے میں، میں امار ہاسپٹل میں خود ایڈمٹ تھی اور میں اوپنلی آپ کو اس بارے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہاں کے ڈاکٹرز، دا گریٹ ڈاکٹر، گریٹ ہیلتھ سسٹم ہیئر ان کینیڈا، مگر میری پرسنل اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہو تو میرے ڈاکٹرز پاکستان میں ہیں۔ تو آئی واز ایڈمٹ ان امار ہاسپٹل، اور امار ہاسپٹل میں میری ایک سرجری تھی اور باہر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور میری ونڈو بالکل سڑک کی طرف تھی۔ آپ یقین کیجئے گا، ایکسیڈنٹ ہونے کے 3 منٹ کے بعد ریسکیو کی فورسز وہاں موجود تھیں، اور جیسے وہ اس بندے کو وہاں لے کے نکلیں، آئی واز ٹوٹلی سولڈ آؤٹ وتھ دیٹ۔ اور جناب پرویز الہی کا صاحب کا جب ذکر ہو رہا ہے تو ان کا ایک اور کام آج تک منہ سے بول رہا ہے، اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پہ سفر کرتے ہیں، تو یہ انہوں کے دور میں، پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، تو انہوں نے ایک اور تبدیلی لے کے آئے تھے کہ اگر کسی اوورسیز پاکستانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پاکستان، دا پی اے ول ناٹ چارج اینی پینی۔ یہ بہت بڑی ان کی چیز تھی جس کو مجھے اور آپ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اچھا میاں جلیل صاحب، آپ بھی جلیل رحمان صاحب، ہاں آپ نے کیا کہا؟
آج موسم کی خرابی کی وجہ سے کافی یہ پروگرام ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ میں میاں صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میاں صاحب، یہ آپ نے جو ایف آئی اے والی جو مجسٹریٹ نے اس ایکس ایل کو ڈسچارج کر دیا مقدمے سے،
وہ کور کر دیا
لاہور میں؟ یہ لاہور میں تقریباً میرا خیال ہے کم و بیش 100 کے قریب تو ایکس ایل ہوں گے جو، جنہوں نے اس عوام کو پچھلے 4 سال میں اور تقریباً 1 سال کی پچھلی جو گرمی تھی اس میں تو انہوں نے سینکڑوں یونٹ ڈالے ہیں عوام کے اوپر، اور لوگ تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا تھا سڑکوں پہ، آپ اس پہ جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، پیپلز پارٹی کے قائدین نے اس پہ احتجاج کیا کہ یہ بلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اب یہ آ کے پتا چلا ہے تقریباً 1.5-2 سال کے بعد کہ لائن لاسز کو، یہ میاں صاحب میں آپ کو ایک آپ کے لیے بڑے بھلے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لیسکو والے، یہ بجلی کی کمپنیوں والے کہتے ہیں کہ ان کے لائن لاسز 10-15% ہے میکسیمم، لیکن جو بجلی کی کمپنیوں کے پرانے جو ریٹائرڈ جنرل مینیجر ہیں تنظیم حسین نقوی صاحب، ये मुझे उन्होंने बताया था कोई दो चार साल पहले कि ये लाइन लॉसेस असल में 60% के करीब है, यानी कि अगर 100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है तो उसमें से 600 मेगावाट बिजली चोरी हो जाती है, और बिजली चोरी में जो आवाम बिजली चोरी करते हैं वो सिर्फ 10% है, और बाकी जो 90% बिजली है वो सनतकार, सरमायादार, जागीरदार और ये जो सनतकार है ये चोरी करते हैं। और ये जर्मन एक कंसल्टेंट को हुकूमत पाकिस्तान ने बुलाया था और उनको कहा था कि आप बिजली चोरी के तदारक के लिए कोई अपनी रिपोर्ट दें, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को पेश कर दी, और जब उन्होंने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान उनकी रिपोर्ट के ऊपर किसी तरह आमद दरामद नहीं कर रही तो वापस जर्मन चले गए, और वो रिपोर्ट अब भी कहीं हुकूमत के किसी सर्दखाने में पड़ी होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपकी सदस्य से, हमारे नाजरीन और सामीन भी सुन रहे हैं, कि पाकिस्तान में बिजली चोरी 50-60% तक है, और बिजली की कंपनियां उसको जाहिर करती हैं कि ये 10-15% है, तो ये जो फिर लाइन लॉसेज है उसको पूरा करने के लिए गरीब आवाम के गर्दनों के ऊपर चोरी चलाई जाती है। तो क्या आप इस जाविये से भी मियां साहब कुछ करना चाहेंगे?
ऐसी बात बताने लगा, जिस शख्स का नाम मोहसिन नकवी है ना जी, जो वजीर दाखिला पंजाब है, वो इस इशू ऐसा सेटल करेगा अगर अल्लाह पाक ने उसको वजारत दाखिला के उद्दे के ऊपर कायम दायम रखा, वजारत दाखिला के उद्दे के ऊपर रहे और उनके साथ उनकी टीम जो है वो बड़ी विजिलेंट रही, तो आप देखिएगा कि ये बिजली चोरी जो ना अगले एक दो महीनों के अंदर अंदर ही आपको लेस्को का मीटर भी जो है वो जेन्युइन तरीके से मीटर की रीडिंग लेता हुआ नजर आएगा, और लाइन लॉसेस जो एक्चुअल होंगे वो रिपोर्ट होंगे, उसका जिम्मेदार जो है वो आम सार्फ नहीं करेगा। जिस बात की आपने निशानदेही की ना कि 50-60% जो लाइन लॉसेज है सप्लायरदार, सनतकार और बाकी करते हैं, ये सारी चीजें उनके नोटिस में है। अब अगले महीने आप फिर देखिएगा जिस एक्सीएन ने, जिस एस्को के अफसर ने, एसडीओ ने किसी भी किस्म की कोई ओवर बिलिंग, और वो जब हमने टैली की और वो ज्यादा निकल आई वो जेल के, और मोहसिन नकवी जानते हैं, मोहसिन नकवी साहब जो है वो और अंदाज से काम करने वाले पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो उनकी कमिटमेंट और तरह की है, वो जब भी अपनी आप कह लें कि जिम्मेदारियां फराहम करते हैं तो उनको इस तरीके से नहीं करता। ये एक्सीडेंट हो गया कि लेस्को के एक्सीएन साहब जो है उनको जुडिशियल साहब ने किसी भी वजह से डिस्चार्ज किया, वरना जिस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई एफआईए ने आपको करता था, और स्पेशल एफआईए ने इतनी तो सीधा दो
आपकी आवाज मुझे बड़ा दुख है मियां साहब की बात, मुझे मेरा दिल करता है कि मुकम्मल जाए, मगर इनकी आवाज में प्रॉब्लम हमें आती है। आई एम नॉट श्योर, जब आप आगे आए थे ना तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी। मियां साहब एक और आईनी दरखास्त जेरे आर्टिकल 184(3) जिसमें आपने, मैं आपकी वर्डिंग पढ़ रही थी कि इख्तियार की तरफ मबजूल आपने करानी चाहिए कि ये लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी अमूर चीफ जस्टिस ऑफिस की तरफ से सवाबदादी इख्तियार का गैर आइनी गैर कानूनी इख्तियार है, और आपने ये फरमाया है कि लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी अमूर जो इंक्रीमेंट्स हैं 4-4 बरस की छुट्टियां की इंजामदही, ये क्या आपने पिटीशन दायर की है?
मैंने हाईकोर्ट के
प्लीज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपकी आवाज प्रॉब्लम,
कानून के मुताबिक जो है वो रेगुलेट किया जाए। वो रेगुलेट क्या किया जाए कि जब भी किसी को भर्ती करना है या जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने जाता है तो वो सरकारी खजाने को ऐसे बांटना शुरू करते हैं जैसे कि वो उनका जाती पैसा होता है, जाती जायदाद होती है, जिसकी मिसाल मैंने अपनी आईनी दरख्वास्त के साथ लाहौर हाईकोर्ट के अभी हालिया रिटायर होने वाले मोहम्मद वीर भट्टी साहब जो है उनकी ली है। जैसे वो जाते हुए अपने स्टाफ को 20 के करीब उनके ऑफिसर्स थे, उनको गुज़श्ता 2.5 बरस से एडवांस दो एडवांस इंक्रीमेंट्स दिए गए। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 40-50 लाख रुपया वो अब जाते हुए अपने एक स्टाफ को यक मुश्त दे गए और ये 20 ऑफिसर्स को देखे गए, फिर 40 से 50 हजार के करीब, बल्कि 30 से 45 हजार के करीब उनकी तनख्वाहों में इजाफा करके चले गए, और इसका उनको कोई इख्तियार कोई नहीं है। ये कोई बादशाह थोड़ी है, या हाई कोर्ट जो है वो किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, कोई जहेज में थोड़ी लेके आया है, ना कोई विरासत में लेके आया है कि आप जाते हुए उसका खजाना जो है वो ऐसे बांटना शुरू करें जैसे वो आपकी जाती जागीर है। फिर वो उन्होंने ये क्या किया कि तकरीबन 200 के करीब हाईकोर्ट के अफसरान थे, उनको भी एक एक दिन का एक एक महीने का एडवांस इंक्रीमेंट की शक्ल में पैसे बांटकर चले गए। फिर उन्होंने अपने रीडर को और उनकी सिविल जज एहलिया को खिलाफ कानून 4 साल की स्टडी लीव दे दी। अब आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी स्टडी लीव का, सरकारी मुलाजम ने जब स्टडी लीव लेने हैं तो उसका एक कानूनी तरीकेकार है, वो पहले यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, उसका वीजा अप्लाई करता है या उसका प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करता है या प्रोग्राम सबमिट करता है। तो जो पंजाब के लीव रूल्स हैं उनके मुताबिक रूल 9 के मुताबिक 2 साल में, 2 साल की सिर्फ आपको स्टडी लीव जो है वो अप्रूव की जाएगी, उसकी भी बड़ी सख्त शरायत है। लेकिन हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने रीडर को और उसकी बेगम साहब जो जज साहब है उनको 4 साल की छुट्टियां दे गए बिना तनख्वाह स्टडी लीव के नाम के ऊपर, और स्टडी स्टूडियो उन्होंने क्या करनी है क्या नहीं करनी और बस सरकारी के नाम। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि आप कम से कम इसको रेगुलेट करें कि चीफ जस्टिस का स्वाबिदी इख्तियार क्या है, क्या डाका मारना चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का स्वाबिदी इख्तियार है, क्या लूटमार करना चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का स्वाबिदी इख्तियार है, तो ये आप तय कर दें। अगर तो अदलिया का ये इख्तियार है किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का कि वो डाका मार सकता है, तो फिर आरफा का आपा को भी डाका मारने की इजाजत दी जाए, मुझे भी दी जाए, हम सबको डाका मारने की इजाजत दी जाए। अगर हम सबको कानून के मुताबिक चलने का, आईन के मुताबिक चलने का दर्श देते हैं हमारे मौजूद जज साहबान, तो फिर इनके अपने चीफ जस्टिस साहबान को भी आईन और कानून के मुताबिक जो है वो अपने स्वाबिदी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी तो हाईकोर्ट के अंदर इंतजामी सतह के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्वायरीज चलनी शुरू हो गई हैं, ऐसी ऐसी शर्मनाक किस्म की कहानियां अरफा अपा लाहौर हाईकोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के सामने आ रही है कि आप यकीन करें कि
कोई एक मिसाल दे दीजिए, कोई एक मिसाल दे दें प्लीज।
ये एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अमीर भट्टी साहब ने जब चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने अपने घर में अपनी बेगम साहबा के लिए 72 इंच की LED अपने ड्राइंग रूम में सबसे पहले दिन जो हुक्म किया था वो किया। अभी आखिरी दिन जब जाने वक्त पता चला कि कोई 20 के करीब गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां वो मुख्तलिफ मदों के अंदर, हेड्स के अंदर अपने चीफ जस्टिस ऑफिस को इश्यू करवा के उनका पूरा खानदान ऐसे इस्तेमाल करता था जैसे लाहौर के अंदर चिंची रिक्शा इस्तेमाल किया जाता है। और जितने साल, 2.5 साल ये चीफ जस्टिस रहे और उससे पहले ये सीनियर जूनियर जज रहे, तो पूरे पंजाब के अंदर जो अदालतों की बिल्डिंग्स के ठेके देने और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी थी वो अमीर मोहम्मद भट्टी साहब की थी, और खरबों रुपए की, अरबों रुपए की नहीं, खरबों रुपए के ठेकों की अंदर जो वायलेशंस हैं, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, डिस्क्रिपेंसीज जो है वो रिपोर्ट हो रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किसी को पता ही नहीं है कि 1.2 अरब का फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, मुल्तान के अंदर ठेके दे दिए गए, वो किस कानून के तहत ठेके दिए गए।
मैं बड़ी आपने कमाल की बात की और अल्लाह करे कि आप इन तमाम चीजों को करें, मैं मगर वुड यू माइंड, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी न किसी का झुकाव किसी तरफ होता है। भट्टी साहब का झुकाव किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ था?
मैंने गुज़श्ता 1 साल में जो ऑब्जर्व किया ना, बल्कि ऑब्जर्व क्या किया ये रिकॉर्ड की बात है, वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के टाउट के तौर के ऊपर।
थैंक यू, थैंक यू।
सबसे बड़ी वजह उनका जो दामाद है अली अफजल शाही, वो माजी में भी PTI से ताल्लुक था, फिर PTI का। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है पाकिस्तान की अदलिया की कि कोई चीफ जस्टिस जो है वो बतौर चीफ जस्टिस अपने दामाद की सियासी इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाता रहा।
ठीक सर,
तरीके ये तो हाल था।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मुझे अब तो बिल्कुल हुआ। मगर अभी आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है जो कि आपके नोटिस में भी होगी, जनाब अचकज़ई जो हैं उन पे इल्जाम सिर्फ इतना है कि उन्होंने सदारत के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। वही अचकज़ई सदा से वहां पे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अब उनको जिस पादाश में, गलत गलत है, एब्सोल्यूटली गलत, हद चीमा, कभी मैं अभी आपसे बल्कि बात करती हूँ, मगर सरकारी अराजी कब्जा केस महमूद खान अचकज़ई उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और इनकी किस पादाश में, उन्होंने कहा है कि इन्होंने 4 मार्च को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे बतौर प्रेसिडेंट के लिए और सदारती उम्मीदवार के तौर पे जनाब आसिफ जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। अब अचकज़ई ने ये जमीन जो 2.5 किनाल की जमीन है तो पता नहीं कब से कब्जा की हुई है, मगर अब ये कहा जा रहा है कि हमारे जो आला जो इदारे हैं और जो कोई भी लोग हैं उन्होंने उनको ये सजा देनी है कि भाई जेड़ा बंदा असी खड़ा किया जी बराबर तू आया किवें, तेरी तेन जरूरत किवें हुई, इसके बारे में क्या फरमाएंगे?
अरफा भाई मेरा जाती तबसरा ये है कि महमूद अचकज़ई साहब के साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है ना उसकी कतन वजह सदारती उम्मीदवार बनना नहीं है। उनके वारंट जारी होना ये काबिल मुजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए, वो एक सियासतदान है, उनके ऊपर जो इल्जाम है उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो आप वो उसका कब्जा रिकवर करवा के आप उसको कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। लेकिन ये एक किसी के आपने केस दर्ज कर दिया, वो एक पेशी पे नहीं आया, दूसरी पेशी पे नहीं आया, कोई भी बंदा नहीं आया, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करवाना और फिर मीडिया के ऊपर उसको कैरेक्टर असैसिनेशन उसकी करवाना, ये अमल रोकना पड़ेगा और इसकी मुजम्मत की चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। लेकिन इसकी वजह आसिफ अली जरदारी साहब के मुकाबले में सदर बन का उम्मीदवार बनना नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक सख्त मौकफ अपनाया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ
और एस्टैब्लिशमेंट का रद्द अमल है ये एस्टैब्लिशमेंट का। तो डू यू थिंक इज देयर एनीबॉडी टू चैलेंज दिस के इस मुल्क में पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिकल स्टैंड में उनके स्टैंड की को परवान चढ़ाया जाना चाहिए? ये नहीं कि अगर कोई किसी का है तो आप उसको दबा के मार देंगे या आप उसको कत्ल करवा देंगे।
नहीं, लेकिन आरफा पर प्रॉब्लम पता क्या है, आज आपने ना आज जियो टीवी के ऊपर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम के अंदर ना तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शहरयार अफरीदी साहब, उन्होंने वो थे और उनके साथ तलाशी साहब थे नून लीग के प्रोग्राम, शहरयार अफरीदी साहब ने इंतहाई मायूस कुन बात की, यानी कि 100 जूते खा चुके हैं वो तहरीक इंसाफ और हम सारे जानते हैं, और उन्होंने बात ये की कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे,
I'm not talking about political parties। मैं देखिए उसमें मुझे और आपको वो पकड़ देनी नहीं चाहिए कि भाई एक ही पार्टी के हम पीछे लगे हुए हैं, नो आई एम नॉट हियर टू कवर दैट, मगर जो गलत चीजें, अभी मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि जो आपने एक काम कर रहे हैं और आपके जनाब जो हमारे सेनेटर साहब हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो आप लोग कर रहे हैं, आई विश के पाकिस्तान के लिए वो बेहतर हो, मैं इन चीजों को कवर करने की ज्यादा कायल हूँ, बट आई एम नॉट हियर टू कवर एनी पोलिटिकल पार्टीज एजेंडा, आई एम हियर टू कवर पाकिस्तान एंड पीरियड, दैट्स व्हाट, मेरी बड़ी माजरत के साथ। आहत चीमा साहब का मामला, पाकिस्तान का अलमिया यह है कि कोई मामला शुरू होता है और फिर वो केस दब जाता है, यानी एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ही वांटेड टू रिजाइन एंड ही डिड रिजाइन, मगर एक गरीब आदमी को फीस माफी का हक है, मगर ये जितने लोग बाहर के ममालिक में पढ़े हुए हैं उनको पता है कि अगर आप अपनी एक सीट छोड़ते हैं वो सीट खाली नहीं रहती, वो सीट फिल हो जाती है, एंड यू कैन नॉट कम बैक टू दैट सीट अनलेस अनटिल यू क्वालिफाई। आहत चीमा साहब का स्टैंड क्या पहुंचा, क्या हमारे जो आपके गवर्नर पंजाब हैं, डिड ही डू द राइट थिंग और इज देयर एनीबॉडी टू चैलेंज दैट एज वेल कि डू नॉट इंटरफियर इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस?
ये रोका नहीं जा सकता और ये बड़ा अफसोसनाक हुआ। मैं तो इस तरह की बातों को और ऐसे ही इग्नोर करता हूं और नहीं इसके ऊपर तबसरा करता। उसकी वजह यह है कि मैं बात सीधी करता हूं, वो आगे जाके बंदे के मत्थे पे लगती है। अब मुझे तो बतौर इस बात के ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई कि एक गवर्नर पंजाब उसका आप हुलिया चेक करें और ऊपर से आहद चीमा।
और मैं कहती हूं कि गम है कि वो जी नबवी दाढ़ी है उन्हें, मतलब वो कमाल
है। कितने चेक करें कि आप फीस माफ करवा रहे हैं, मतलब आप एसिसन में भी जाने के बाद भी आप फीसों के लिए दबाव डाल रहे हैं और आपकी वजह से वो एक गोरा जो है वो प्रिंसिपल रिजाइन कर गया। वो पूरी दुनिया में जाके क्या बताएगा कि मुसलमानों ने मेरे साथ ये शुरू किया, मुझसे ये गलत काम करवाना चाहते थे। और जो आप उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए अपनी चोरी को छुपाने के लिए कि जी इसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, फलान चल रही थी, तो वो इंक्वायरी अभी सामने आई थी जब आहद बच्चे के आहद चीमा के बच्चों का एडमिशन जो है वो जारी होना था। अब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश बदला।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपके मुंह से सुनना अच्छा लगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे दाऊद साहब, मेरा आखिरी सवाल आपके साथ, एक खातून और टिकटॉक एक लिहाज से जो बुरे लोग हैं उनको पकड़वाने का भी बायस बनता है। 1 जनवरी को ये वाकया होता है मोहतरमा आयशा साहिबा, एंड दिल खराश वाकया कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है और खातून उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है और एक औरत की जुबान भी इतनी अच्छी नहीं थी। आई एम सैड। मुझे पता चला है कि आमिर मतीन साहब की ये बेगम है और टिकटॉक पे आने के बाद 4 महीने के बाद खातून पकड़ी गई। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 3.5 महीने के बाद खातून अल्टीमेटली टिकटॉक पे आने के बाद और ये वायरल होने के बाद ये खातून पकड़ी गई। सुना है कि ये किसी आमिर मतीन की बीवी है। हु इज दिस आमिर मतीन? तो क्या उसकी पुल्स इतनी स्ट्रांग है कि इस औरत का भी रिमांड हो जाएगा?
ये आमिर मतीन साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो जो ये जो खातून है वो उनकी जो है वो सबका एहलिया है। काफी अर्से पहले उनकी आपस में अलहदगी हो चुकी थी और वो अपना इंडिपेंडेंट रह रही हैं, उनके बच्चे अपने इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। उनका आमिर मतीन साहब के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इंसिडेंट चूंकि अनफॉर्चुनेट बात है ना कि मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर आया, टिकटॉक के ऊपर आया, तो फिर हुकूमत को भी याद आ गया और फिर पुलिस को भी याद आ गया और अब उसकी गिरफ्तारी जो है वो होगी, वरना 4 महीने तक तो वो सारे सोए रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जुबान मेरी आपकी हर एक की जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ, पब्लिक सर्वेंट के साथ बड़ी शायस्ता होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट्स की जुबान भी अवाम के साथ बड़ी शायस्ता होनी चाहिए। लेकिन बस हमारे मुआशरे में ये एक अफसोसनाक बात है कि हर बंदा अपने आप संभाला कर समझता है, जिसका नुकसान जो है वो आज अरे भुगत रहे हैं।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल उसी हवाले से ही मैं आपसे, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तसल्ली से टाइम दिया, मगर हमारी दिस इज वेरी सैड कि हम बाज़ औक़ात और आप जैसे अकलमंद, मतलब मुझको आपने समझ देनी है, एक नौजवान जिसकी समझ और जिसका एनालिसिस शुड बी मच बेटर देन माइन, आप क्या देखते हैं? अभी आपने, मैंने एक सवाल आपसे किया था, ये जो आटे का पैकेज रमजान पैकेज था और आपने कहा हाँ मेरी नजर से ये गुजरा था, बट डू यू थिंक देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर एवरीथिंग कि अगर कोई कंपेन चलती है तो उस कंपेन की मुतल्लिका इदारे से बाकायदा परमिशन होनी चाहिए और परमिशन होने के बाद वो कंपेन चलनी चाहिए। 15 करोड़ यानी मुल्क में पैसा है कोई नहीं खाने पीने के लिए, और आपने इसको, आपने बड़ा लाइट लिया इसको, आई एम वेरी सरप्राइज, और जिसमें 2 लोगों को बरतरफ करने के बाद दे ब्रॉट अ थर्ड पर्सन इस मुल्क का। डू यू थिंक, बी ऑनेस्ट, दिल पे हाथ रख के, डू यू थिंक इसका अलमिया ये है कि अपना बंदा ला दे हो तो जो मर्जी करा लो?
नहीं वो आपा, मैंने इसको लाइट इस वजह से लिया कि मेरे नोटिस में नहीं था ये वाकया। एक चीज मेरे इलम में नहीं है तो मैं उसके ऊपर तबसरा करूंगा तो मुमकिन है मैं गलत बात कर जाऊं। बाकी जो आपने सवाल किया ना कि 1 रुपया भी अगर सरकारी खजाने से खर्च करना है तो वो उसकी कानून के मुताबिक अप्रूवल, मंजूरी और उसका मकसद पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उसका मकसद जो है वो वाजिया होना लाजमी है। और जो कोई भी इसकी खिलाफवर्जी करता है, मेरे समेत जो कोई भी इसकी खिलाफवर्जी करता है, वो काबिल मुजम्मत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे एक बंदा है, चाहे दो बंदे हैं, चाहे दस बंदे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आरफा है, जो भी है। सरकारी खजाना जो है, आवाम के टैक्स का पैसा जो है, वो बहुत बड़ी अमानत है, वो बहुत मुकद्दर
है। बहुत शुक्रिया मियां साहब। और मियां साहब, मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ और एक टास्क देती हूँ कि डेफिनेटली यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर एंड आई विल टेक यू ऑन एयर एंड आई होप यू विल वेरी जेन्युइन एनालिसिस देंगे कि क्या ये वाकई हुआ और क्या ये हल है कि अगर कोई शख्स एक नापसंद हो तो उसको बरतरफ करने के बाद अपनी मर्जी का बंदा वहां अपॉइंट करें। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? मेरी रिक्वेस्ट है, आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी बिजी, बट आई रिक्वेस्ट कि ये जो रमजान पैकेज का एक मामला हुआ है और जिसमें मामूली रकम नहीं है, 15 करोड़ की रकम है सर, 15 करोड़, यानी मुल्क दे विच खान नू पैसे कोई नहीं है। बट आई होप फॉर द डे इंशाल्लाह श्रीलंका से बेहतर साबित होगा पाकिस्तान।
कुछ भी नहीं है, मोहतरमा आसमा जंगीर साहब बड़ा दुरुस्त फरमाती होती थी कि जिस दिन जर्नलों की करप्शन सामने आएगी ना, उस दिन आपको सियासतदान जो है वो फरिश्ते लगने लगेंगे। मैं तो इससे ज्यादा आगे चला गया हूँ, जर्नलों को छोड़ दें, जिस दिन ये जजों की करप्शन सामने आएगी ना आपको जर्नैल फरिश्ते लगने शुरू करेंगे। ये मैं जिस साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की बात कर रहा हूँ, मैं खरबों रुपए की बात कर रहा हूँ, अरबों रुपए की बात नहीं कर रहा, जिसकी इंक्वायरी जो है वो चल रही है। मुझे तो जर्नैल और सियासतदान, ये 15 करोड़ रुपए, मुझे तो ये करप्शन ही नहीं लग रहा।
अच्छा, वो उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन है, अलीम खान साहब ने जो जमीन की है वो भी गलत खबर है, ये सही खबर है कि वो जमीन अल्टीमेटली उनको मिल गई हाउसिंग सोसाइटी? इज इट राइट और रॉन्ग?
ये खबर भी मेरे नोटिस में नहीं।
अच्छा, हर चीज आपके
मेरे नोटिस में नहीं है। अरफा हुआ ये है कि गुज़श्ता जब से ये ईद रमजान मुबारक के बाद अदालतें खुली
है, ये है कि आप जरा कोशिश करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जितना ब्रेन ड्रेन इस वक्त हो रहा है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान को बेइंतहा छोड़ रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान पे हुकूमत करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है इस कौम को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, और आप दो वादे करो उसके बाद हुकूमत कर लो, तो पैसे लपेटो, मुल्क तो बाहर चले जाओ। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन दो मैटर्स को, मैं आई रिक्वेस्ट यू, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इन दो मैटर्स को जरूर देखिएगा, क्या अलीम खान साहब ने वाकई वो जमीन ली है? क्योंकि जब इमरान खान साहब के दौर में वो 1-1 करोड़ का खाना खिलाते थे ना, तो मैं एयर वेव्स पे कहा करती थी, कैसे हो सकता है कि आरिफा मुजफ्फर 1 डॉलर खर्च करे और उसका उसमें मफाद ना हो? कैसे हो सकता है कि एक आदमी 1 करोड़ का अड्डा तो शाह खर्च कोई भी नहीं है, ठीक, बट अल्टीमेटली ही गॉट व्हाट ही वांटेड। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज इसको लुक आफ्टर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपका साथ शामिल होने के लिए। आई रिक्वेस्टेड यू फॉर समथिंग एंड आई होप यू विल डिलीवर इट। मियां साहब जाहिर है अपने लिहाज से करते हैं, बाज़ गलत कामों की पिटिशन भी दायर कर रहे हैं, दिस इज गुड। अल्लाह करे कि एट द एंड ऑफ द डे हम अकरबा परवरी को खत्म करते हुए हम अपने मुल्क का सोचें, और अगर ये शाखें सारी की सारी सूख गई और ये मुल्क अगर बेड़ा गर्क हुआ तो नुकसान किसका होगा? नुकसान मेरा होगा, नुकसान आपका होगा। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, एहसान मंद हूं सर आपकी, थैंक यू। मियां साहब से आपकी, हमने मियां दाऊद इनका नाम है, बहरहाल मैंने पूछा उनसे, उन्होंने जवाब दिया, अब बॉल आपकी कोर्ट में है, अब आपने इसका एनालिसिस अपने ताई करना है। चंद स्पॉन्सर्स विल कम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो, 905-607-5000, 905-607-5000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट,
हीरमैक्स हीरिंग सेंटर कॉस्ट शिराज 416-792-8792.
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
قرض سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق آل دا سولوشن پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80% محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں پرسکون زندگی اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577.
Tired of paying transfer fees to send money abroad? Over time, they can add up to more than $100. But $100 goes a long way. That's a month of groceries in the Philippines. Or 60 liters of gas in India. So, send all the love with a $0 CIBC transfer fee, always. When you use CIBC Global Money Transfer, visit cibc.com/transfer. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. CIBC. Ambitions made real.
کہیں مارگیج نہیں مل رہی، جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان. 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام. ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں. ری فائنینسنگ آپشنز، رینیول آپشنز، مارگیج ڈیفیکلٹیز، ڈاؤن پیمنٹ ایشوز، سیلف امپلائڈ، پرائیویٹ فنڈز، سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹ وردی جیسمین پرمار سے. نمبر ٹو کال 647-923-5659 لائسنس نمبر 10530.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا، ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
پروگرام میں ایک طرف سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میں دو اسپانسرز کا پیغام دیتی جاؤں. آئی ٹی این کی پروڈکٹس، آئی ٹی این کی پروڈکٹس ہمارے صرف ایتھنک سورس پہ نہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیسی کے نام سے، DESI دیسی کے نام سے ان کی دانے ہیں، فروزن پروڈکٹس ہیں، ہمدرد کی پروڈکٹس، شان کی پروڈکٹس، تمام آئی ٹی این کی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ والمارٹ پہ چلے جائیں، سوبیس پہ چلے جائیں، میٹرو پہ چلے جائیں، ہر جگہ پہ ان کی پروڈکٹس آئی ٹی این کی موجود ہیں. ظاہر ہے یہ چیزیں میرے اور آپ کے استعمال کی ہیں، جس میں چاہے دالیں ہوں، چاہے شان کے مسالہ جات ہوں، چاہے روح افزا اور مشروبات ہوں، چاہے بہت ساری بیوریجز، جوسز وغیرہ ہو جائیں، مینگو جوسز وغیرہ ہو جائیں، ڈرائیڈ فروٹس ہیں، نٹس ہیں، پستاچیو وغیرہ ہیں. تو آپ پلیز اچھا اگر آپ ان کی ہول سیل پرائز پہ لینا چاہتے ہیں نا، ایگزیکٹلی ان کا ہول سیل کا بھی ایک سینٹر ہے. اگر آپ ہول سیل پرائز پہ، ان کا ہیڈ آفس 40 کمانڈر بلیوارڈ ٹورنٹو پہ ہے. www.itnfoodscorp.com کارپوریشن سے itnfoodcorp.com پہ اگر آپ لاگ آن ہوں گے تو یو کین ڈیفینیٹلی فائنڈ آل دا ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ. الحبیب ٹریولس کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی ٹکٹ اس وقت ریٹرن ٹکٹ آپ کو $1630 کی مل رہی ہے، $1630 کی مل رہی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ الحبیب ٹریول سے رابطہ کر لیجئے گا. پی آئی اے کی سیل 15% اس وقت ڈسکاؤنٹ ہے، 1630 یہ سٹارٹ ہے اس وقت، اور اس نے اینڈ ہونا ہے 10 مئی کو، ٹھیک ہے. اگر آپ 23 اپریل سے 5 اگست کے درمیان ٹریول کرنا چاہتے ہیں، 23 اپریل سے 5 اگست، ویری گڈ صاحب، ویری گڈ، ویری گڈ. مگر آپ کو ٹکٹ پہلے، یہ جی گرمیوں کی چھٹیاں پڑ رہی ہیں آپ کو، یا بہت سے لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، گریٹ ڈیل. مگر یہ ٹکٹ آپ لے صرف 10 مئی سے پہلے سکتے ہیں. ٹکٹ اویلیبلٹی از اونلی بفور دا 10th آف مئی.
but the ticket price is $1,630 hai. Aapko ticket pehle book karani chahiye. But yeah, you can travel till 5th of August. 5 August ko aap wapas aa jayenge, apne bachcho ke school shuru ho jayenge. Agar aapko book isko 10 Mai se pehle karana hai, kara le, ye na ho ke phir seats na mile. Al Habib subah 11 baje se leke raat sham 7 baje tak open hota hai. Yahan pe Nycop passport Pakistan embassy mein jane ki zarurat hi nahi. Lodi nahi ji, jaan di lodi koi nahi. Al Habib ko call kijiyega. आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, नाइको पासपोर्ट, वीजा, पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवाना है, कोई अटेस्टेशन करवाना है, व्हाई टू वेस्ट टू डेज, जस्ट कॉल देम एंड आपके घर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे. उनका नंबर है 9055547786, 5547786 उनका नंबर है. मेरे साथ हमारे बहुत प्यारे भाई ऑयल से मुतल्लिक एक जिक्र करती हूँ. वेनसडे को वैसे उनका दिन होता है, वेनसडे को वो तशरीफ लाया करते होते हैं. अब देखिएगा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी ये ऑयल चाहिए, मेरा खत्म हो गया था. आई पर्सनली यूज इट, इट्स अ वेरी गुड ऑयल. सरवत, आप अपना टेस्टिमोनियल दे रही थी. अच्छा, मैंने नोट नहीं किया क्योंकि मेरे बाल खिचड़ी किस्म के बाल हैं. मेरा बेटा भी हंसता होता है कि एक्चुअल खिचड़ी है माँ तेरे सर में, तो मैंने नहीं नोट किया. मगर सरवत ने मुझे अभी बताया है कि बाल काले भी होते हैं. मेरे तो चिट्टे बाल कोई नहीं काले हुए, शायद हुए. हाँ, मैं क्योंकि यहाँ कनपट्टियों में पीछे यहाँ यहाँ लगाती होती हूँ, शायद आई डोंट.
आपका जी, इट्स ट्रू, बिल्कुल. मैंने जैसे आप फिक्र भी किया था, मेरे बहुत जल्दी यहाँ ये सामने से सब पैद हो जाते थे और मुझे हर डेढ़ हफ्ते के बाद ना कलर का, मैं बड़ी तंग थी. जब ये मैंने लगाया तो फिर मैंने देखा कि अब मुझे इस तरह से नहीं करना पड़ता और आई वाज सरप्राइज कि मेरे बाल काले हो गए. मुझे यकीन नहीं आया. और मजे की बात यह कि हमारे वॉशरूम में ना मेरा सिंक इधर है, फरूख साहब का इधर है. ये मैंने अपने सिंक के पास रखी हुई थी और ये घूम के फरूख साहब के सिंक पे चली गई है.
तो वो फरूख अब इस्तेमाल
कर, वो इस्तेमाल करने लग गए.
अगर तुम्हारे मियां बहुत बनने समझने लगे हैं तो जरा खास ख्याल रखो.
वो काबू कर लिया उन्होंने इस बोतल को.
ये ऑयल बहुत अच्छा है. और मलिक साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं. अपना नंबर दीजिए सबसे पहले तो सर, माइक.
पहली बात सुन लीजिएगा, ये सरवत बीबी से पहला मामला नहीं. सबसे पहला मामला 2004 में ये मीनू बीबी के साथ हुआ था, जब उनके हस्बैंड ने ऑयल चोरी कर लिया था. ये आपको बता रहा हूँ.
अच्छा, मीनू के मियां के साथ?
यस, जो बात कर रहा हूँ 2004 की बात कर रहा हूँ आपके साथ. 2004 में जब मैंने लोगों को खुला बांटा, मैंने सोचा मेरा $23,000 जाया हो गया, तो उस वक्त जब मुझे रिपोर्टें आनी शुरू हुई, उसमें मिन्नो की रिपोर्ट आई कि आपका तेल बहुत अच्छा है. मैंने कहा यार वाकिफकार हैं, ऐसी दोस्त हैं, सब कुछ है, सोचतेगा चलो पता लगेगा. लेकिन जब पता चला कि नहीं, हर एक को इसका इफेक्ट हुआ, लोगों के बाल काले होने बंद हो गए, उनके बाल चर्व ठीक हो गए. और ये जब ड्रामा हुआ नजमुल हसन वगैरह के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मिन्नो की लड़ाई भी हुई, उसने ढूंढा भी, लेकिन असल में जो मुश्ताक साहब है ना, वो उस वक्त उन्होंने मुझे आंख मारी के चुप कर जा यार. मैं भी चुप कर गया.
और आरपा जी, मतलब कमाल की बात यह कि मुझसे रात पूछते हैं, कहते हैं कि तुम मेरा तेल यूज कर रही हो. मतलब कैन यू इमेजिन कि मेरे वहां से उठा के करके खुद यूज करने लगे और फिर कहते हैं कि तुम क्या उसमें से तेल यूज कर रही हो, मतलब लगा रही हो सर पे.
आपसे रिक्वेस्ट है, दिस इज अ गुड ऑयल. मुझे जहां तक है कि ऑफकोर्स बाल गिरने कम हुए हैं, मेरा खत्म हुआ हुआ था तो जस्ट गेम. माजिद भाई का और मेरा 20 साल का मुजफ्फर की जिंदगी से ही हमारा साथ है. और वी यूज टू, माजिद जमाल जी यूज टू बी आर वेरी गुड स्पॉन्सर. फिर माजिद भाई ने आज तक मुझसे कभी कोई चीज कह के नहीं ली, नेवर नेवर नेवर. मगर कल आए मेरे यहीं पे खड़े हुए, कहते आपका थोड़ा सा आपका ऑयल है वो वाला. मैंने कहा नो, मेरा खत्म हुआ हुआ है. कहते नहीं नहीं, आप मुझे थोड़ा सा दे दें, मेरे लिए तो थोड़ा सा ही बहुत होगा, मेरे सर पे तो दो ही ऐसे दो उंगलियों में तेल ही लगता है. एंड आई वॉज वेरी सैड. तो आज जफर मलिक साहब ये इसको लेके आए हैं. तो बहरहाल इट्स अ गुड ऑयल. हम जब भी जहां गए हमने अपनी चीज जो ली हमने उसके पैसे भी अदा किए, मगर मेरा यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट टू कॉल हिम टू गेट इट. इट्स रियली गुड ऑयल, बाल गिरने से रुकते हैं फॉर श्योर, मगर मेरा ख्याल है कि बाल निकलते भी हैं. जी मलिक साहब, आपने अपने ऑयल के बारे में बताइए.
जी आप क्या
आप पहले अपना नंबर बताएं.
मैं नंबर बता देता हूं, मेरा फोन नंबर है जी 647-521-5159 647-521-5159-5159 और कुछ जी
521-5159 बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को गिरने से रोकने के लिए. इवन आज ही मेरे नोटिस में आया कि इवन ये कलर भी उनका डार्क करता है. दिस इज अ गुड ऑयल, इट्स रियली अ गुड ऑयल. क्या वजह है कि तेल में इतनी खूबी हो सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल?
देखें, जब आप किसी चीज पर पूरे खलूस से काम करें, मैंने कितनी दफा पहले बताया, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं शाहीना आसिफ, शी इज इन लाहौर, अल्लाह उन्हें जन खुश रखे, बहुत प्यार करने वाली. उन्होंने मुझसे 1979 में कहा था कि भाई ऐसी प्रोडक्ट अगर तुम बना सकते हो जो बना रहे हो तो बालों का इलाज क्यों नहीं बनाते. तो फिर हमने उस पर काम किया. मेरे पास फार्मासिस्ट था, एनालिस्ट था, क्वालिटी कंट्रोल वाले थे, हम सब ने मीटिंग्स की. उसके बाद उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि बाल झड़ते क्यों हैं. जब आपको कॉज मिल जाए फिर आप उसके रिजल्ट के लिए चीज निकालते हैं कि इस कॉज को कैसे खत्म किया जाए. मसलन जुकाम है या खांसी है, खांसी बीमारी नहीं है, खांसी अलामत है एक बीमारी की, ब्रोंकाइटिस की. तो इलाज उसका होना चाहिए कि असल जड़ क्या है जिसको ठीक करना है. बाल खुश्की से सूख जाते हैं भाई, इसलिए वो पोर में नहीं रुकते. बालों को हमने मोटा कर दिया और पोर की ग्रिप को मजबूत कर दिया. अब आंवला और फ्लेक्सी सीड और आलमंड को मिलाकर इस तरीके से बनाया कि जिस वाइटमिन की जरूरत है आपकी स्किन के अंदर के आपके बाल सफेद ना हो, वो आपको मिल गया तो आपके बाल सफेद होने बंद हो गए और फिर जो वापस उगे तो वो काले ही उगे. ये है कि ये सफेद होने से रोक देता है, झड़ने से बंद करता है, रीग्रोथ दिखाता है, खुश्की सिकरी एलोपेशिया किसी किस्म का आपको सोराइसिस टाइप का प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, हम आपको उसका भी इलाज दे देंगे. और कोई बात जी?
नंबर आप अपना एक बार फिर से बताइए.
मेरा फोन नंबर है जी 647-521-5159. आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं.
उर्दू में बताएं नंबर.
हम 647-521-5159 साडा नंबर है. असी तुहाडे घर फ्री डिलीवरी देने हैं.
किस एरिए तक आप फ्री डिलीवरी
देते? सारा यूएसए और सारा कैनेडा असी फ्री दे रहे हैं.
जून कैनेडा से, अमेरिका से, कहीं से भी कॉल करें
जी आपको मिलेगा. जून में इसका रेट बढ़ जाएगा.
क्यों?
क्यों? इसलिए कि सब रॉ मटेरियल महंगा हो चुका हुआ है, मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है और जून तक मैं ये दे सकता हूं इस रेट में. उसके बाद $10 बढ़ जाएगा. आपका तो 10% चल ही रहा है, आप क्यों फिक्र कर रही?
जखीरंदाजी शुरू करो जी.
चले पकड़ लेते हैं फिर, आज जाने नहीं देते.
इट्स रियली गुड ऑयल. अगर आपके बाल गिरते हैं, ऑफ कोर्स मैं आपको बताती हूँ, बाल हमें कॉन्फिडेंस देते हैं.
इट्स रियली गुड
ऑयल, फ्रेश हेयर टॉनिक. आप जफर मलिक साहब को कॉल कर लीजिए 416-521-5159.
एक क्रेडिट दीजिएगा मुझे, आज इस बात की खुशी है. मैं अभी सोच रहा था कि मैं जितने रेडियो पर गया और जितने लोगों ने, जितने एंकर्स लोग थे, जो भी न्यूज दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, भाई ये सब का टेस्टिमोनियल है. उन सब ठीक हुए हैं तो उन्होंने मेरी बात मानी, चाहे वो आप हैं, चाहे वो सरवत बीबी हैं, चाहे वो कोई भी है. उन्होंने इसको देखा है, ट्राई किया है, उनको चीज अच्छी लगी है तो तब वो स्टार्ट हुई है. ये क्रेडिट तो दीजिएगा ना हमें.
सर आपके पास सारे क्रेडिट्स हैं और देखिए सब अदर ट्रीटमेंट्स आर सो एक्सपेंसिव, इट इज जस्ट अप्लाई ऑयल. उन्होंने कहा है कि सर पे मसाज करें 1 से 2 घंटे के लिए. आई जस्ट दे से डू इट एवरी डे, आई डू वंस अ वीक. अब तो खैर मैंने 3-4 हफ्ते से किया भी नहीं है. डू इट वंस अ वीक, पर आई डू इट एवरी वीक. वंस अ वीक मैं करती हूँ, मगर मैं रात को लगा के अपने तकिए के ऊपर अपना तौलिया रखती हूँ एंड आई स्लीप. तो इट्स अ गुड ऑयल.
लेकिन अगर देख लेना, अगर 7 दिन लगातार लगा लें और रीग्रोथ भी देख लें, झड़ने तो बंद होते ही हैं, ری گروتھ بھی دیکھ لیں تو ان کو جو تسلی ہوتی ہے اس سے مجھے دعا ملتی ہے نا.
اٹس ٹرو آرفا جی, ری گروتھ بھی ہے کیونکہ میں نے نوٹس کیا تھا کہ میرے یہاں سامنے سے کافی بال کم تھے, اب تھوڑا سا بہتر ہوا ہے.
اب میں یہ بتاؤں گا آپ کی مانگ میں اسکن بھر جائے گی,
اللہ کرے میری گروتھ ایڈی ہو جائے, ڈبل ہو جائے.
رب خیر کرے, رب خیر کرے گا. لو جی ہوں اجازت, بڑی لمبی گلا کیتیاں, تھوڈا ٹائم ہے بہت زیادہ.
ظفر ملک صاحب سے میں نے آپ کی بات کری, تھینک یو ویری مچ فار لسننگ دس شو, ان شاء اللہ ول ٹاک ٹو یو اگین. ظفر ملک صاحب کا آپ نمبر نوٹ کر دیجیے, 6475215159 آپ کا نمبر ہے. ایک گیت کی طرف چلتے ہیں, بہت ساری باتیں کرنی ہے نا. ویسے میں آپ کو بتاتی ہوں 6 بجے تک ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے نیوز کو بھی ہم کور کریں گے, ایک انفارمیشن کو بھی شیئر کریں گے, اسپانسر سے بھی ملاقات کرائیں گے, مگر اس کے بعد تھوڑی گیتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اسٹوڈیو میں آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ, اور اسٹوڈیو کا نمبر 416-620-1778-420-1778-416-620-1778 بی پارٹ اینڈ پارسل ٹو دا پروگرام.
ارپا جی گیت بہت ہی اسپیشل ہے, پاکستان کا یہ گیت ہے اور بلین سے زیادہ اس کو لوگ دیکھ چکے ہیں. تو عشق مرشد سے یہ گیت ہے, اس کے جو سنگر کمپوزر اور لکھنے والے بھی احمد جہازیب ہے, ان کی آواز میں.
احمد جہازیب بہت خوبصورت ہے, کہو ایک دن بہت پیارا گانا تھا, ان کی میرے پاس البم ہے, مگر کہو ایک دن کا کوئی ثانی نہیں.
تمنا جانے ادا تجھے جیسا ہے سوچا پایا وہی سورج کی کرنوں سا ایک چہرہ دیکھا ہے تم سا میں نے نہیں میری محبت کا ہر لمحہ تجھ میں ہی گمسا گیا تو مجھے جو پیا تیرا میرا ہے پیار آمن تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں یہ جیون کیا کر مانگے تو میری جان نظر کر تیرا میرا ہے پیار کہو تم ہاں میرا عشق سب سے جدا تیری ہی خاطر سوچوں میں چاہے ہو جو بھی بھلا نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانہ کہہ دو مجھے جو پیا چاہے تو قدموں میں سر
ਲਾ
ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੈ ਲਾ
ਓਹੋ ਸਰਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਫਰੂਟਸ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਪਲੇਟਾਂ ਬਾਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ
ابو جان خدا کا واسطے اس گاڑی سے پروڈیوسر ایک گدا گاڑی خریدتے ہر موڑ پہ رک جاتی ہے
بچے پریشان کیوں ہوتی ہو لاؤ گاڑی کی چابی دو ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو رپیئر گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم انجن ٹیون اپ چار ویل کمپیوٹر بیلنس بریکس نئے اور پرانے ٹائر ساتھ آئل فلٹر مفت میں چینج स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी 21 मेलविक ड्राइव रिटोबिको टेलीफोन
416-7468-100
مجھے مزے دے چکن ٹکے کباب بریانی دال تڑکا
لاہوری اسٹائل ناشتہ مزیدار کڑھائی ملک واٹرنگ کباب میں سیزلنگ باربیکیو آئٹم
شاہین ٹکا اور کباب
ان فلیمنگٹن مال
جی صاحب آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کے حوالے سے ہم بہت سے لوگوں کو اناؤنسمنٹ بھی کیا کرتے ہوتے ہیں اوپن مائک کیفے کا جب ذکر کرتی ہوں جناب ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں اس پروگرام میں شاہ جی اس وقت بھی شامل ہیں اوپن مائک کیفے جو ہے دیٹ از ڈنڈاس اینڈ ڈکسی کے انٹرسیکشن پہ اوپن مائک کیفے اور ویکینڈ کے اوپر حلوہ پوری کا ناشتہ مطلب باقی چیزیں تاڑیاں اپنی پر دیکھ لو تھی کھانا کن ہے شاہ جی گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون السلام علیکم ہاؤ آر یو
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماجد بھائی والا سلام کر دیا میں نے
آج تو شاہ جی بڑے لگ رہے ہیں لاٹری شاٹری نکلی ہے بڑے خوش خوش لگ رہے ہیں
اج لاٹری ہے وے اج میری بہن ایک آرفا مظفر جی انہوں نے ریفر کیتا ہے اپنی فیملی ممبرز نو بھی سارے ریسٹورینٹ تے انہوں نے کہا جی اے بیسٹ فوڈ ہے اور تسی جاؤ اور تانوں اچھا لگے گا اور منو بلیو کرو خوشی جی رہی نے سمائی نہیں جا رہی اور بڑا میں خوش ہوں ادو کا جدو کا میں سنیا بھی میری بہن نے بلے بلے کراتا ہے اور ریفر کیتا ہے اور اے ایک چیز میں گارنٹی کرتا ہوں آن ایئر گارنٹی کرتا ہوں اگر ان کو مزہ نہیں آئے گا ایک پیسہ نہیں لیں گے
ہاں
اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے آپ کو پتا ہے ہمارا طریقہ کار جو کام کرنے کا وہ بیسٹ ہے ابھی ان کا جب فون آیا تھا نا تو میں نے کہا جی ابھی میں باجی کا شکریہ ادا کر لوں اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ وہ میں نے فوراً ایک منٹ نہیں لگایا
میرے مظفر کی دلبر جانی یہ اس کی بیسٹ فرینڈ ظاہر ہے بھائی بہن تو سارے بہت پیارے ہوتے ہیں مگر بھائی بہنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دکھ درد خوشی پیار محبت سیر چھیڑا چھاڑی رازداری میں یہ بہن واز ویری کلوز ٹو مظفر اینڈ آج شی از ویری کلوز ٹو می ایز ویل میرے ہر غم میں میری ہر دکھ میں میری ہر خوشی میں شی از آلویز بسائڈ می تو مینو میسج کر دینے سلام آرفا مظفر پلیز سینڈ می نمبر فار مائک کیفے میں کیا مائک کیفے از یور اون باجی آپ کیوں فکر کرتی ہیں تو آپ سے صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ اسما باجی آپ کو پتا ہے یہ وہ ہے جس نے اسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ بطور لائر کام کیا ہوا ہے یہ وہ خاتون ہے جس نے عورت فاؤنڈیشن پاکستان کی جو تھی عورت فاؤنڈیشن میں ہائر پوزیشن پہ کام کیا ہے اور عورت فاؤنڈیشن نے کینیڈا میں ایک ورک شاپ تھی جس میں جب اس زمانے میں یہ پاکستان میں ہوتی تھی تو یہ شی ٹریول ٹو کینیڈا عورت فاؤنڈیشن کی طرف سے انہوں نے ٹریول کیا تھا اینڈ شی از وہ وکیل ہونے کے ناطے شی از اے ویری ووکل تو کھانا میں اسما باجی نے ایئر تے بھی ضرور آنا ہے انہوں ڈر بھی نہیں کسی کو لگتا انہیں دسنا بھی ضرور ہے تو میں ہوں میں بھی پوری کی پوری تھی اختیار چاہ پلیز انہوں خاص سروس دیا جائے
جی اے چیز کا میں پرومس کر رہا ہوں اگین آپ کو پتا ہے میری نیت اور میرا
جو
ایفیشنسی ہے نا وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے میں یہ پرومس کر رہا ہوں آن ایئر एक शिकायत भी होगी ना,
चलें जी वीकेंड का मेन्यू दें आप, वीकेंड का मेन्यू दें आप।
वीकेंड पे सुबह 9 बजे से लेके सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर जो है 1 बजे तक आपको हलवा पूरी, लाहौरी चने, तिल्लो वाले नान, तिल्लो वाले नान यहाँ पे नहीं मिलते आपको पता है, वो नान प्लेन मिलते हैं, तिल्लो वाले नहीं मिलते, मैं तिल्लो वाले
नहीं 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 मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं,
बड़े कम जगहों में मिलते हैं,
नहीं जहाँ जब आप रिक्वेस्ट करें तो आपको तिल्लो वाले नान मिलते हैं फरमाइश के ऊपर।
नहीं हमारा जो ना वो उसके साथ निहारी और बोंग पाई के साथ तिल्लो वाले नान हम देते हैं, वो लोग इतना खुश होते हैं यार, कहते हैं हमें लाहौर याद करा दिया, वो तिल्लो वहां पे हम खाया करते थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जितनी बार भी लाहौर जाता हूँ ना मुझे फ्रेश ब्रेकफास्ट मिलता है, वो बाजारी मिलता है ज्यादातर, तो मेरे वो जो बंदे काम करते हैं वो जाते हैं भाग के ले आते हैं, मैं फिर आलकस के मारा आपको पता खुद नहीं कुकिंग वगैरह कुछ नहीं करते हम लोग, तो वो मैं लाजमी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई तिल्लो वाले नान लेकर आ साथ, तो यही है यहाँ पे वो तिल्लो वाले नान।
आपने लाहौर में अपनी दूसरी बीवी नहीं रखी हुई?
नहीं भाजी ये कमी रह गई बस।
शाह जी मैं मान नहीं
सकती। नहीं सीरियस सीरियस पक्की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये मैंने ना ये बड़ा अच्छा मैं इसके रीजन चलो बता देता हूँ, अभी जिस सिस्टर का फोन आया था ना वो कहती मैं आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करती, आपकी दुआएं जो आप करते हैं बताते हैं वो भी सुनती हूँ, आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती हूँ, और मैं आपकी एक तरह की फैन भी हूँ, भी आप इतना अच्छा बोलते भी हैं बात भी करते हैं, मैं ये सब क्रेडिट जाता है हमारी सिस्टर जो आरफा जी है इनको क्रेडिट जाता है, ये माशाल्लाह इतने सिंसियर है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सही उर्दू तो आप बोलते हैं, हम तो उर्दू बोलने के वो सत्यानाश कर देते।